डाकोर में भ्रमण करके आए आप, गोमती तालाब और जो भी स्थान है जो वर्णन सुबह हुआ था वो सब देख के आए।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai Gauranitai Gauranitai. Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Vishnupad Paramhansa Parivrajakacharya Shtotar Satam. His Divine Grace Abhay Charana Aravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Shri Shri Ranchod Rai Ji Ki Jai. Shri Dakor Dham Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Samaved Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaved Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaved Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mahyam Tadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahakanda Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahakanda Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Yahan Dakor me Bhagavan Shri Krishna रणछोड़ राय के नाम से जाने जाते हैं।
जैसा कि आप सब जानते हैं, रणछोड़ अर्थात रण को, ऋण भूमि को छोड़ के भाग जाने वाले व्यक्ति का एक संबोधन है। तो भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ इसलिए कहा जाता है कि वो ऋण भूमि को छोड़कर चले गए थे। वैसे किसी एक राजा के लिए या क्षत्रिय के लिए ऋण भूमि छोड़ के जाना ये अच्छा काम नहीं होता। क्षत्रिय के लक्षण भगवद गीता में दिए हुए हैं, 7 लक्षण हैं। उनमें से एक है युद्धे च अपलायनम, युद्ध में डर के मारे भाग के नहीं जाना, युद्ध में रहना, या तो जीतना या तो मर जाना। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार क्षत्रिय के लक्षण या उनका कर्तव्य ऐसे होता है, परंतु श्री कृष्ण युद्ध छोड़कर चले गए थे। अब जिनके मन में श्रद्धा नहीं है या जो भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों को अच्छी तरह से ठीक से जानते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि भगवान या श्री कृष्ण डर के मारे चले गए, परंतु उनके भक्त उनकी निंदा नहीं करते बल्कि उनकी प्रशंसा करते हैं कि देखो भगवान ऋण भूमि छोड़कर चले गए। यदि कोई अन्य व्यक्ति, कोई क्षत्रिय ऐसे कार्य करता तो उसकी बहुत कड़ी निंदा होती। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि 500-600 साल पहले की बात है, तब भी भारत में क्षत्रियों के समाज में ऐसी प्रथा थी कि जो युद्ध में जाता है, खास करके राजा है, उसे हार के आना नहीं चाहिए वापस। एक बार ऐसे हुआ कि एक राजा जब लौटा तो उसके पीठ में घाव था, तो रानी ने वापस नहीं लिया कि पीठ में घाव कैसे आ गया। इसका मतलब है कि शत्रु को पीठ दिखाया, इसका मतलब है कि भाग रहे थे वहां से। तो कभी घाव होना है, हमला होना है तो सामने से होना है। परंतु ये भी बात है कि क्षत्रिय नियमों के अनुसार युद्ध करने वाले लोग किसी भागते हुए व्यक्ति के पीठ पे हथियार मारते नहीं हैं, तीर वगैरह छोड़ते नहीं हैं, परंतु किसी कारणवश हो भी गया हो लेकिन फिर भी अच्छा नहीं। फिर प्रभुपाद जी एक राजपूत रानी की चर्चा करते हैं जो अपने किले के ऊपर थी, किले के दरवाजे के ऊपर खड़ी थी। उनके पति राजा लौट के आए युद्ध छोड़कर, तो उनके पत्नी ने आदेश दिया कि दरवाजा नहीं खोला जाए क्योंकि ये ऐसे ही चले आए हैं, आधे युद्ध को आधा छोड़कर चले आए हैं। अभी कौन सी पत्नी चाहेगी ऐसे कि अपने पति को वापस नहीं ले। फिर भी उन्होंने ऐसे कहा क्योंकि वो युद्ध आधे छोड़कर चले आए थे। तो उनका कहना था या तो जीत के आओ या तो ये भावना थी। इसलिए द्रौपदी देवी महाभारत में कहती हैं, जब हताश हो जाती हैं युद्ध भूमि वनवास के समय, उस समय वो कहती है, अपने ही भाग्य को कोसती हैं कि उनका जन्म एक या उनका विवाह एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। वो कहती हैं कि धिक्कार हो इस क्षत्रिय जन्म को, क्योंकि इस भौतिक जगत में क्षत्रिय बनने से कोई बड़ा दुख नहीं है क्योंकि ये सब अनुभव करना पड़ता है। तो क्षत्रिय समाज के नियम काफी कठोर होते हैं, वैसे देखा जाए तो वैदिक सभ्यता में चाहे कोई ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, जो भी कुछ क्यों न हो, नियम बड़े कठोर हुआ करते थे। सभी लोग नियमबद्ध थे और नियम पालन अच्छी तरह से करते थे। तो श्री कृष्ण के समय भी ऐसे था, कोई ऐसे सोच भी नहीं सकता था कि एक क्षत्रिय युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाए, कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। वो तो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं हो सकता था, परंतु श्री कृष्ण एक बार नहीं, उन्होंने दो बार ऐसे किया और बड़े आराम से चलते गए। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ऐसे करने के बाद उनकी निंदा किए जाने के बजाय उनका गुणगान हो रहा है, और गुणगान ही नहीं, उनके इस कार्य के अनुसार उनके विग्रह को नाम दिया जा रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है, और लोग उस नाम से उनका गुणगान कर रहे हैं। वो रणछोड़ है, रणछोड़ है, क्योंकि भगवान दिव्य है, तो वो जो भी कार्य करते हैं वो भी दिव्य है। हम बद्ध जीव द्वंद्वों में पड़े हैं, इसलिए अच्छा बुरा इसका भेद करना पड़ता है। सुख दुख, मान अपमान, इन चीजों का विचार बद्ध जीवों के लिए होता है, परंतु किसी मुक्त पुरुष के लिए नहीं होता। जब मुक्त पुरुष के लिए नहीं होता तो जिनके ऊपर ध्यान करने से एक मुक्त पुरुष मुक्त बन जाता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वो भले इन द्वंद्वों में कैसे पड़े हों, वो तो संभव नहीं है। वैसे श्री कृष्ण परम सत्य होने के नाते जो भी कुछ वो करते हैं वो सही है, वो अच्छा है, वो भला है, वो निंदा का कारण नहीं हो सकता। भले हमारे लिए कोई निंदात्मक कार्य हो सकता है, हम कुछ ऐसा गलत काम करें तो लोग निंदा करेंगे, वो निंदा भी सही हो सकती है, परंतु भगवान के लिए ऐसे कोई बात नहीं उठाई जा सकती जिससे कि हम उनकी निंदा कर सकें, क्योंकि जो भी कुछ भगवान करते हैं वो भला ही है, अच्छा ही है, क्योंकि वो परम सत्य है। इसीलिए चाहे भगवान रणभूमि पर रह के धुआंधार युद्ध करें और अपने शत्रु को पराजित करें, जो कि उन्होंने अनेकों बार किया था, लाखों लाखों बार किया, या तो वो रणभूमि छोड़कर चले जाएं और ऐसे प्रतीत हो कि वो डर के मारे चले गए, परंतु भगवान के लिए दोनों ही चीजें एक ही हैं। भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए फर्क पड़ता है। यदि हमने भगवान की निंदा की कि देखो ये रणभूमि छोड़कर चले गए, तो फिर हमारी हानि होगी, और यदि हमने भगवान की प्रशंसा की कि भगवान ने कितने शूर वीरता से युद्ध किया और अपने शत्रुओं को पराजित कर दिया, या देखो भगवान कितने महान हैं कि वो युद्ध भूमि छोड़कर चले गए, तो इसमें हमारी भलाई होगी। साधारण व्यक्ति युद्ध भूमि छोड़कर चले जाता है तो उसकी निंदा होती है, साधारण व्यक्ति चोरी करता है वो गिरफ्तार हो जाता है, दंडित हो जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण जब चोरी करते हैं तो उनकी स्तुति होती है, माखन चोर के नाम से विख्यात रहते हैं, चीरहरण लीला में भी गोपियों के वस्त्रों को चोरी कर ली, कोई साधारण व्यक्ति करता तो उसकी ऐसी पिटाई हो जाती आज आजकल के जमाने में तो देखा जाए, लेकिन भगवान का गुणगान किया जाता है। और उधर भगवान श्री कृष्ण सबका हृदय तो चोरी करते ही हैं, अपने भक्तों का हृदय चोरी कर लेते हैं। तो जो कार्य साधारण व्यक्तियों के लिए जघन्य है, निंदात्मक है, वो भगवान जब करते हैं तो उनके लिए प्रशंसनीय है, क्योंकि वो भगवान है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जीवन में, कि इसके पहले कि हम किसी व्यक्ति की निंदा करें या व्यक्ति के कार्यों की निंदा करें, हमें उनका स्थान समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति सोचे कि मेरा स्थान ऊंचा है इसलिए मैं कोई भी कार्य कर सकता हूं, ऐसा नहीं। परंतु हो सकता है कि जब हम किसी के कार्यों को देखते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति इस तरह से कार्य क्यों कर रहा है, तो शायद यदि हम ये जान लेते वास्तव में कि ये व्यक्ति कौन है, तो हम ऐसे सोचते नहीं। जैसे कोई राजा होता है तो ये राजा कुछ भी कर सकता है अपने राज्य में, जाता है आता है, जब आता है तो सारे आने जाने वाले सड़कें बंद हो जाती हैं, तो लोग कहें भाई ऐसे क्यों हो रहा है, ये कि राजा है राजा है तो आप कैसे क्या निंदा कर सकते हैं। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जब कोई काम करते हैं, कोई कार्य संपन्न करते हैं, तो निंदा का कोई विषय ही नहीं होता। और जो भगवान की निंदा करते हैं इस तरह से, वो असुर माने जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि भगवान के कर्म जो होते हैं वो दिव्य हैं। इसलिए तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति भली भांति मेरे जन्म और मेरे कर्मों को दिव्य समझ लेता है या जान लेता है, उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता, बल्कि वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो भगवान को नापने का प्रयास करते हैं अपनी भौतिक बुद्धि से, कोई भौतिक जो लक्षण होते हैं उनके द्वारा उनका आरोप भगवान के ऊपर लगाकर उनका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो जिन बातों के ऊपर हम किसी इंसान का विश्लेषण करते हैं, नापतोल लेते हैं किसी व्यक्ति को, उन्हीं लक्षणों से हम भगवान को नापने का प्रयास करते हैं, जो कि ठीक नहीं है, संभव नहीं है। जैसे कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले भगवद गीता की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुर्योधन भीष्म देव से कहते हैं कि चलिए पितामह, हम हमारे राज्य हमारे सेना को देख लें कि हमारे सेना में बड़े बड़े सेनापति और योद्धा कौन कौन हैं, और पांडवों के सेना में उनके बड़े बड़े सेनापति और योद्धा कौन हैं। और दुर्योधन स्पष्ट बड़े आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हमारी सेना मजबूत है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास भीष्म हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं इत्यादि। हमारी सेना 11 अक्षौहिणी वर्गों की है, पांडवों की सेना तो केवल 7 अक्षौहिणी वर्गों की है। साथ साथ हमारे यहां भीष्म जैसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, भीष्म हमारे नेता हैं, तो हम भीष्म के शक्ति द्वारा आरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। परंतु पांडवों के रक्षक कौन है? भीमसेन। और भीमसेन की शक्ति तो सीमित है, भीष्म देव के सामने भीमसेन क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से दुर्योधन ने यह सोचा कि कौरव सेना पांडव सेना से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। परंतु एक महत्वपूर्ण बात थी जो दुर्योधन ने अपने विचार में उसकी गणना नहीं की, और वो क्या है? श्री कृष्ण। कि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, इसलिए चाहे पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी वर्ग हो, 25 हो, या एक अकेले अर्जुन हो, वो काफी है श्री कृष्ण उनके लिए। परंतु दुर्योधन की बुद्धि भौतिक थी, आध्यात्मिक नहीं थी, तो श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण का स्थान क्या है, उनका बल क्या है, वो नहीं जानता था। अर्जुन तो अच्छी तरह से जानता था, इसलिए जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास द्वारका में गए थे युद्ध के पहले, दुर्योधन गए थे अपने काम से, अर्जुन गए थे उनके काम से, तो जब श्री कृष्ण जो उस समय विश्राम कर रहे थे जागे, तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन उनके सर के पास बैठे हैं और अर्जुन उनके चरणों के पास बैठे हैं। तो पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि भक्त नम्र होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा स्थान भगवान के चरण कमलों में है, परंतु दुर्योधन का घमंड बहुत था, तो सीधे जाके कृष्ण के सिर के पास बैठ गए, जो कि किसी एक सम्माननीय व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। तो दुर्योधन तो भौतिक व्यक्ति था, उसे ये सब पता नहीं था। तो फिर दोनों से पूछा कि क्या चाहिए आपको, मैं आप दोनों के पक्ष में तो नहीं रह सकता, परंतु आप या तो मुझे चुने या मेरी सेना को चुने, बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने चुनाव के लिए पहला अवसर अर्जुन को दिया। अर्जुन के लिए कोई विचार का, दोनों के लिए, अर्जुन और दुर्योधन के लिए कोई मुश्किल सवाल नहीं था दोनों के मन में उत्तर स्पष्ट था। अर्जुन के मन में उत्तर स्पष्ट था कि मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण की सेना नहीं हो तो चलेगा, लेकिन कृष्ण मेरे साथ हो तो बस मेरे लिए काफी है। दूसरी ओर दुर्योधन का मन भी स्पष्ट था, इतनी सेना और ये अकेले कृष्ण, ये क्या करेंगे कृष्ण, ये तो अकेले एक आदमी है, भले वो कितने भी शूरवीर हो, उनके पास ये चक्र वक्र आदि सब हो, लेकिन ये इतनी बड़ी सेना, वो हमारे साथ हो तो बहुत अच्छा, बढ़िया। तो जब अर्जुन ने ऐसे कहा कि कृष्ण मुझे आप चाहिए, आपकी सेना नहीं, तो मन ही मन में दुर्योधन सोच रहा था कितना मूर्ख व्यक्ति है, खैर जो भी हो मेरे लिए अच्छा है, मेरा काम आसान हो गया, अर्जुन ने मेरा ही काम कर लिया, चलो। तो इस तरह से भौतिक दृष्टि से जब भगवान की ओर देखते हैं तो गलत निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये असुरी वृत्ति होती है जब हम भौतिक दृष्टि से चीजों की गणना करने का प्रयास करते हैं, परंतु अर्जुन की दृष्टि ऐसी नहीं थी और भक्तों की दृष्टि भी ऐसी नहीं होती है। इसलिए जब श्री कृष्ण चाहे माखन चोरी करते हैं, गोपियों का चीर हरण करते हैं, या युद्ध भूमि छोड़कर चले जाते हैं, या रासलीला करते हैं, तो भगवान ऐसे भक्त जो हैं वो भगवान के इन कार्यों की प्रशंसा करते हैं, और केवल प्रशंसा ही नहीं, बार बार गुणगान करते रहते हैं, ध्यान चिंतन मनन करते रहते हैं लीलाओं का। बल्कि जो अन्य व्यक्ति हैं जो श्री कृष्ण को समझते नहीं हैं, उनके लिए ये सारे कार्य निंदा के विषय बन जाते हैं कि देखो भगवान ने ऐसे किया, कृष्ण ने ऐसे किया, तो आप कैसे ऐसे भगवान को पूछ सकते हो। तो भगवान के कोई कार्य करने में और हमारे कार्य करने में अंतर होता है। तो इसलिए भगवान के युद्ध भूमि से चले जाना ये एक प्रशंसा का कारण है भगवान के लिए, भक्तों के लिए। तो भक्त केवल कोई कारण देखते हैं, कोई लीला देखते हैं जिसमें भगवान की प्रशंसा की जाए, इसलिए तो भगवान आते हैं यहाँ पर, अपने लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, ताकि हमारे लिए श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के लिए कोई विषय मिल जाए। यदि भगवान यहाँ नहीं आते तो हम लोग केवल संसारी बातों में रमण करते रहते। कृष्ण के आने के बाद भी तो यही चल रहा है, लेकिन भक्त वो होते हैं जो श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं, पठन करते हैं, पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं, गुणगान करते हैं, और उससे जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर वो भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बन जाते हैं। आप सब तो जानते ही हैं कि भगवान शब्द की परिभाषा क्या है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नम भग इतिंगणा। पराशर मुनि विष्णु पुराण में कहते हैं कि भग अर्थात समस्त प्रकार के ऐश्वर्य या आकर्षित करने वाले गुण, और वान या वत मतलब जो मालिक है या जिनके पास ये सारे लक्षण या गुण हैं, तो भगवान षड ऐश्वर्यों से संपन्न व्यक्ति को भगवान कहते हैं, वो श्री कृष्ण है। तो कौन से हैं ये छह प्रकार के ऐश्वर्य? एक है धन, दूसरा है शक्ति, तीसरा है यश, चौथा है सौंदर्य, पांचवा है ज्ञान और छठा है वैराग्य। तो जो पहले पांच हैं इनको समझना सीधा है, आसान है, परंतु भगवान के वैराग्य को समझना ये इतना आसान नहीं है। आगे हम द्वारका जाने वाले हैं और हम देखेंगे, जैसे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि द्वारका में यद्यपि श्री कृष्ण अपने 16,108 रानियों के साथ में रहते थे, श्री कृष्ण ने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित किया था, प्रत्येक रानी के साथ वो अलग अलग रहते थे, दिन भर उनके साथ में रहते थे, केवल जब सुधर्मा सभा गृह में जाने का समय आता था तो थोड़े समय के लिए वहां जाते थे, शाम को फिर से लौट के आते थे। तो उस समय उन्होंने अपने 16,108 रानियों को पूरी तरह से संतुष्ट रखा, इनमें से किसी एक को भी एक भी शिकायत नहीं थी श्री कृष्ण के प्रति, इतना संतुष्ट रखा था उन्होंने इन रानियों को। और हर एक रानी सोच रही थी कि श्री कृष्ण केवल मेरे साथ हैं और मेरे वश में है, परंतु श्री कृष्ण निरासक्त थे। वो कहानी एक बार आपको बताई थी हमने, कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी, जन्माष्टमी के कथा में हम बताए थे कि कृष्ण को नित्य ब्रह्मचारी कहते हैं। स्वतः भीष्म देव भी कहते हैं जब राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा किनकी होनी है ये चर्चा होती है द्वारका में, तो अनेक लोग कहते हैं जब श्री कृष्ण का नाम आता है तो सहदेव कहते हाँ बहुत सही है, ऐसे ही करना चाहिए, श्री कृष्ण को हमें अग्र पूजा अर्पण करना चाहिए। तो शिशुपाल जैसे लोग निंदा करते हैं और भीष्म देव याद करते हैं कि लोग तो मुझे ब्रह्मचारी कहते हैं परंतु मैं सच्चा ब्रह्मचारी नहीं हूं, श्री कृष्ण सच्चे ब्रह्मचारी है। वैसे भीष्म देव तो सच्चे ब्रह्मचारी थे, एक सच्चा ब्रह्मचारी ही अच्छी तरह से बता सकता है कि वास्तव में दूसरा सच्चा ब्रह्मचारी कौन सा है। तो भीष्म देव का निष्कर्ष है कि श्री कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी हैं। तो 16,108 रानियां हैं, इसके पहले वृंदावन में न जाने कितने गोपियों के साथ में रासलीला करते थे, रात भर उनको उनके कपड़े चोरी करते थे, ये सब करते थे, फिर उनको नित्य ब्रह्मचारी कहते हैं। इसलिए तो ये श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए इनको समझना इतना आसान नहीं है। भौतिक दृष्टि से देखने जाएंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे। तो ऐसे नित्य ब्रह्मचारी हैं श्री कृष्ण, ये है वैराग्य। श्री कृष्ण छोड़ के चले गए वृंदावन मथुरा, और मथुरा छोड़ने का समय आया, छोड़ के चले गए, द्वारका चले आए, फिर ये भौतिक सृष्टि छोड़ के वापस अपने धाम में जाने का सवाल आया, छोड़ के चले गए, कोई आसक्ति नहीं। अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान अवश्य करते हैं वो, परंतु पूरी तरह से निरासक्त रहते हैं। अपने विभिन्न अवतारों में भी उन्होंने अपने वैराग्य का प्रदर्शन किया, जैसे श्री राम के अवतार में जब वो दशरथ महाराज के एक शब्द कहने पर राज को छोड़कर चले गए वनवास। जबकि इतने सारे लोग थे जिन्होंने की कोशिश की उनको बताने के लिए कि नहीं, आप नहीं जाना, आप यहीं रहना, आपका अधिकार है, आप ज्येष्ठ पुत्र हो। वैसे इतिहास में इतने राजकुमार हुए हैं जिन्होंने अपने पति, अपने पिता की हत्या करके उनके राज सिंहासन में वो बैठे थे, क्योंकि उनको डर था कि पिता कहीं हमारे किसी दूसरे भाई को ना दे दे, और जबरदस्ती अपने पिता को मार के उनके स्थान में बैठ गए। ऐसे कितने उदाहरण हैं, जैसे औरंगजेब है, कंस है, परंतु श्री राम ने वैसे नहीं किया, निरासक्त थे। तो जब श्री कृष्ण ऋणभूमि छोड़कर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होता कि लोग मेरी निंदा करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं कि मैं जो कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होने वाला है, कि क्षत्रिय को ऐसा नहीं करना चाहिए उनको नहीं पता था, ऐसा भी नहीं है, अच्छी तरह से उनको पता था, फिर भी उन्होंने किया, और ऐसा करके उन्होंने अपने वैराग्य का प्रदर्शन किया। तो ये एक कारण है कि श्री कृष्ण ऋणभूमि छोड़कर चले गए। भगवान अपने लीलाओं के द्वारा अपने 6 ही ऐश्वर्यों को प्रदर्शित करते हैं, कभी ऐश्वर्य का, कभी अपने यश का, कभी ज्ञान का, कभी सौंदर्य का, कभी ज्ञान का, और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण ऐसे भी कार्य करते हैं जिससे कि वो अपने वैराग्य के ऐश्वर्य को भी प्रदर्शित करते हैं। यदि वो ऐसे लीलाएं नहीं करते तो हमें कैसे पता चलता कि वास्तव में वो, उनके पास ये वैराग्य का ऐश्वर्य है या नहीं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के ऋणभूमि छोड़ के जाना ये उनका एक, उनके चरित्र का एक आभूषण है, एक दाग नहीं है, कलंक नहीं है उनके चरित्र के ऊपर, परंतु उनके चरित्र के ऊपर एक आभूषण है जिससे कि उनके चरित्र का सौंदर्य या आकर्षण और भी बढ़ जाता है। इस दुनिया में सभी लोग बहुत चिंतित रहते हैं कि अन्य लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। यदि हमारी निंदा होती है किसी को अच्छा नहीं लगता, हर एक व्यक्ति चाहता है कि कोई मेरी निंदा नहीं करे, हर एक व्यक्ति मेरी प्रशंसा करे। तो भगवान श्री कृष्ण की निंदा भी कभी कभी होती थी, जैसे समंतक मणि के लीला में हम देखते हैं कि भगवान को ऐसे कार्य करना पड़ा साबित करने के लिए कि उन्होंने समंतक मणि चोरी नहीं की थी, परंतु कभी कभी भगवान श्री कृष्ण ऐसे वैराग्य के ऐश्वर्य को प्रदर्शित करते हैं मानो कि उनको कोई परवाह ही नहीं है, और वास्तव में ऐसे उनको कोई परवाह नहीं है, दुनिया जो बोले सो बोले। कभी कभी एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए फिर वो कहते नहीं नहीं, मेरे ऊपर ये गलत आरोप लगाया गया है तो मुझे सत्य क्या है स्थापित करना चाहिए, और कभी कभी कहते हैं दुनिया जो कहे सो कहे। तो इस दृष्टि से भगवान के रणछोड़ लीला को हमें जानना चाहिए। अब हुआ ये कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहा करते थे, पूरे 18 साल वहां रहे, जब वृंदावन छोड़कर वो मथुरा चले आए तो उस समय उनकी आयु लगभग 10.5 वर्ष की थी, और फिर वो 18 साल वहां पर रहे मथुरा में। 18 सालों में मथुरा में सारे मथुरावासी बहुत सुखी थे, बड़े दिव्य आनंद का अनुभव उन सब ने किया। श्री कृष्ण के सानिध्य में बलराम जी वहां थे, तो भगवान ने वहां पर बहुत सारी लीलाएं की, और लेकिन हुआ ये कि जब कंस का वध श्री कृष्ण ने किया तो कंस की जो दो पत्नियां थीं अस्ति और प्राप्ति, स्वाभाविक है उनको बड़ा दुख हुआ। किसी भी पत्नी को दुख होगा जब उनके पति की हत्या की जाती है। तो अस्ति और प्राप्ति को भी पता नहीं था कि श्री कृष्ण कौन है, और उनके पति का सौभाग्य कि श्री कृष्ण के कर कमलों द्वारा उनकी हत्या हुई है, कि उनका उद्धार हो गया, ये समझ अस्ति और प्राप्ति को नहीं थी। और क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं थे तो वो अपने पिता जरासंध के पास चली गई। जरासंध मगध के राजा थे। मगध अर्थात आज जो बिहार झारखंड है वो उस समय मगध कहा जाता था उस स्थान को। तो खैर मगध के राजा जरासंध की ये दो पुत्रियां थीं, तो वापस आ गईं और बहुत रो रो के कहने लगी कि देखो ये कृष्ण ने हमारे पति को मार डाला है। तो जरासंध को बहुत क्रोध आया और जरासंध ने व्रत लिया कि मैं केवल श्री कृष्ण को ही नहीं, मैं सारे यदु वंश को समाप्त करूंगा, क्योंकि उनकी वजह से मेरी पुत्रियों की ये दशा हो गई। तो जरासंध ने एक भयंकर सेना खड़ी कर दी, अनेक अक्षौहिणी वर्ग जिसमें बड़े बड़े हाथी थे, घोड़े, रथ और सैनिक तो करोड़ों की संख्या में, और ऐसे बहुत बड़ी सेना लेकर वो चले आए मथुरा की ओर। जब जरासंध ने सुना था कि श्री कृष्ण ने उनके दामाद कंस का वध किया है तो खूब निंदा की जरासंध ने श्री कृष्ण की। सुखदेव गोस्वामी काफी अच्छी तरह सुंदर रूप से वर्णन करते हैं, इसका विस्तार में वर्णन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, परंतु संक्षेप में बताएं तो जरासंध कहने लगे कि ये श्री कृष्ण पुरुषाधम है। वैसे श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, पुरुषों में से उत्तम है, परंतु जरासंध कहने लगे कि ये कृष्ण पुरुषाधम है, पुरुषों में से अधम, सबसे निम्न। परंतु आचार्यों ने कहा है कि वास्तव में इसका सही अर्थ देना चाहिए, ऐसे निंदात्मक जो शब्द हैं उनको भी प्रशंसात्मक एक स्वरूप देना चाहिए। तो ये पुरुषाधम शब्द का अर्थ है कि श्री कृष्ण ऐसे पुरुष हैं कि जिनके सामने अन्य लोग जो हैं वो निम्न श्रेणी पर आ जाते हैं। तो ऐसे माता सरस्वती ने, सरस्वती देवी ने जो विद्या की देवी हैं, उन्होंने जरासंध के वचनों को एक अलग अर्थ देकर प्रस्तुत किया है। तो बहुत कुछ कहने लगे, फिर कहने लगी ये कि श्री कृष्ण इनके बारे में क्या कहा जाए, ये तो बंधु हा है, बंधु हा हर्ता अर्थात अपने रिश्तेदारों की हत्या करने वाला। कंस तो इनका इसका मामा था और ये इस लड़के ने अपने मामा की हत्या की और ये कार्य मैं सहन नहीं कर सकता। परंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जरासंध एक महत्वपूर्ण बात को आसानी से भूल गए। वो क्या बात थी कि कंस ने स्वयं अपने रिश्तेदारों की हत्या क्या नहीं की थी, अपने छह भांजों की हत्या नहीं की, जो छह बच्चे थे देवकी के, छह पुत्रों की हत्या तो की थी बहुत क्रूरता से, ऐसी क्रूरता से वो कि माँ के सामने किसी छोटे बच्चे को, नवजात शिशु का की हत्या करना पत्थर से पीट के, इससे ज्यादा क्रूर और कौन हो सकता है। तो इतनी क्रूरता से कंस ने अपने छह भांजों की हत्या की, उसका विचार जरासंध ने नहीं किया। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने मामा, अपने रिश्तेदार की हत्या की, तो ये जरासंध के लिए सोचा कि ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि असुरी वृत्ति के लोगों का स्वभाव ऐसे होता है, हमेशा अन्यों का दोष देखते हैं, अपना दोष या अपने मित्रों का दोष नहीं देखते हैं। तो दैवी संपदा के लोग जो होते हैं, दैवी प्रकृति के प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, वो अपनी गलती तुरंत मान लेते हैं, अन्यों में दोष देखने के लिए आतुर नहीं होते हैं और अपने दोषों को अच्छी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। तो जरासंध ने कहा, बंधुहा, ये पहली बात थी निंदा करने वाले कि इसने अपने रिश्तेदारों की निंदा की, हत्या की। दूसरी बात, जरासंध कहने लगे कि इसके बारे में ये भी कहा नहीं जा सकता कि ये क्षत्रिय है, वैश्य है, कौन है। जब वृंदावन में था तो गाय चराता था ये लड़का, और अब अचानक कभी राज एक क्षत्रिय परिवार के लक्षण, वेशभूषा उसकी ऐसे है, मथुरा में आकर बड़ा क्षत्रिय बन गया है ये, लेकिन ये क्षत्रिय है, वैश्य है, कौन है ये भी नहीं पता। शिशुपाल ने भी ऐसे ही कहा था राजसूय यज्ञ में, जब वो श्री कृष्ण की निंदा कर रहा था। और फिर वो कहने लगे कि ये गुप्त है, गुप्त अर्थात जो गोपनीय है, ये वैश्य है, क्योंकि गुप्त जो होते हैं वो वैश्य होते हैं, एक नाम है गुप्त, तो ये गुप्ता या गुप्त, ये वैश्य परिवार के होते हैं। गुप्त का ये भी अर्थ होता है जो छिपा हुआ है, गोपनीय जो बात होती है। तो वास्तव में वो बता रहे थे कि ये तो पहले से छुपा हुआ था, उसको छुपा के रखा था, न पता नहीं ये इसकी, इसका वर्ण कौन सा है, इसकी जाति कौन सी है, कुछ पता नहीं। और नंद महाराज ने वृंदावन में उसको छुपा के रखा था। इस तरह से एक के बाद एक जरासंध श्री कृष्ण की निंदा करने लगा और फिर बहुत बड़ी सेना लेकर मथुरा के पास आया। जब श्री कृष्ण बलराम ने देखा और अन्य मथुरा वासियों ने भी देखा कि चारों ओर से इस बड़ी सेना ने मथुरा शहर को घेर लिया है, तो मथुरा वासी बहुत भयभीत हो गए। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए मेरे प्रिय भक्तों को निडर बनाने के लिए, ये जरासंध इतनी बड़ी सेना लेकर आया है तो क्या किया जाए। यदि मैं अपनी बड़ी सेना को लेकर जाऊं तो मेरे सैनिकों की हत्या हो सकती है। तो श्री कृष्ण ने ठान लिया कि मुझे अकेले जाकर कुछ करना चाहिए और बलराम जी को साथ में लेकर जाना चाहिए, छोटी सी सेना हम साथ में लेकर जाएंगे, छोटी सी। और जैसे ही श्री कृष्ण के मन में ये विचार आया तो तुरंत आसमान से दो रथ आ गए उनके सामने। रथ बहुत सुंदर थे, बहुत मजबूत थे, उनमें तरह तरह के हथियार थे, रथ चलाने वाले सारथी भी थे वहां पर। तो श्री कृष्ण ने बलराम की ओर देखा और कहा कि हे बलराम जी, अभी आपके लिए उचित होगा कि इस असुरी सेना का वध करके, इनको हरा के हमारे प्रिय भक्तों की रक्षा करना, तो कृपया रथ पे आरूढ़ हो जाइए, सवार हो जाइए, हम दोनों चलते हैं और जरासंध की सेना का सामना करते हैं। तो बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों रथ के ऊपर, अपने अपने रथ के ऊपर चढ़े और फिर जब बाहर आए मथुरा के किले के बाहर, तो दोनों ने अपना शंख बजाया। हालांकि जरासंध की सेना बहुत बड़ी थी, श्री कृष्ण की सेना बहुत ही छोटी थी, परंतु कृष्ण और बलराम के शंख की ध्वनि सुनने पर जरासंध के सेना के जितने भी सैनिक थे उनका हृदय टूट गया, कांपने लगा, जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भी हुआ था। जब पांडवों ने अपना और श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया तो कौरव सेना में सभी का हृदय कांपने लगा, तो ऐसे यहीं पर भी हुआ। और जरासंध का सामना करके श्री कृष्ण, जरासंध बहुत कुछ कहने लगे श्री कृष्ण के बारे में, भला बुरा कह दिया, लेकिन तुम्हें, तुम्हारे साथ तो मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, कि तुमने ऐसे सब किया, तुमने अपने रिश्तेदारों की हत्या की, तुम क्षत्रिय हो वैश्य हो मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसे व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं कर सकता जो क्षत्रिय भी नहीं है, लेकिन बलराम हाँ मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। तो चलो यदि तुम युद्ध करना चाहते हो, तुम स्वर्गलोक जल्दी पहुंचना चाहते हो, जहां वीर गति प्राप्त करना चाहते हो, तो तुरंत आओ हमारे सामने। तो श्री कृष्ण ने भी कहा, क्योंकि ऐसे ललकार के योद्धा बात किया करते थे, एक दूसरे को ललकारते थे एक दूसरे को और क्रोधित बनाने के लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम भी ऐसे व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो जो मृत्यु को बहुत आमंत्रण कर रहा है। तो ठीक है, तुम्हारे आमंत्रण को हम स्वीकार करते हैं और शीघ्र ही तुम्हें बताते हैं कि हमारा स्थान क्या है और तुम्हारा स्थान क्या है। श्री कृष्ण के मन में ये विचार आया कि जरासंध की हत्या करने से मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जरासंध की इतनी बड़ी सेना है, तो मेरा अवतार लेने का कारण यह है कि पृथ्वी का भार बहुत भारी हो चुका है, पृथ्वी का बोझ इन पापी घमंडी क्षत्रिय योद्धाओं के कारण पृथ्वी का बोझ इतना भारी हो चुका है कि पृथ्वी माता बहुत पीड़ित है। तो पृथ्वी माता का बोझ हल्का करने के लिए मैं तो यहां प्रकट हो चुका हूं, इसलिए केवल जरासंध को मार डालूंगा तो फिर क्या होगा। इसलिए जरासंध को मुझे मारना नहीं चाहिए, जरासंध की सेना को मारूंगा ताकि जरासंध वापस चले जाएगा और सेना लेकर दोबारा आएगा, फिर और सैनिक आएंगे, उनकी हत्या मैं करूंगा, उनका उद्धार कर दूंगा, इससे मेरा उद्देश्य पूर्ण होगा। जैसे राजा कुलशेखर कहते हैं, जयति जयति देवकी नंदनसौ, जयति जयति कृष्णो वंश प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामलह कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वीभार नाशो मुकुंदः। तो जय जय हो, जय जयकार हो उन कृष्ण का जो देवकी के पुत्र कहलाते हैं, जय जयकार हो उस कृष्ण का जो वृष्णि वंश के प्रदीप हैं, जय जयकार हो उस कृष्ण का जिनके शरीर की कांति एक बरसात के बादल के समान रंग का है, और जय जयकार हो उस श्री कृष्ण का जो कि पृथ्वी के भार को कम करने के लिए आए हैं और जिनका नाम मुकुंद है। तो भगवान ने सोचा कि पृथ्वी का भार मुझे यदि कम करना है, जो कि मेरा उद्देश्य है यहां आना, तो मुझे जरासंध को नहीं मारना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने दोनों ने अपना युद्ध करना शुरू कर दिया, अपना शारंग धनुष निकाला और उधर मथुरा के किले के ऊपर से सारे मथुरावासी, खास करके जो महिलाएं हैं जो युद्ध में नहीं आई थी, वो सब ऊपर से देख रही थी। तो युद्ध ऐसे हुआ करते थे आमने सामने, और भयंकर युद्ध शुरू हो गया, मानो कि कई घने बादलों से घिरे हुए श्री कृष्ण, सारे चारों दिशाओं से लोग तीर आदि हथियार छोड़ रहे थे श्री कृष्ण की ओर, परंतु श्री कृष्ण ने अपने हथियार चलाने शुरू कर दिए, जितने भी हाथी घोड़े सब थे वो सब गिर गए, मर गए, लाखों की संख्या में सैनिकों की हत्या हो गई, सब जगह सर हाथ पैर इधर उधर पड़े थे। सुखदेव गोस्वामी विस्तार में वर्णन करते हैं, बड़ा भयानक दृश्य था, वर्णन भी करना संभव नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि खून की नदियां बह रही थीं और ऐसा एक भयंकर विध्वंस श्री कृष्ण के लिए करना, सुखदेव जी कहते हैं इतने आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण वो व्यक्ति हैं, परम सत्य हैं, जो अपने विचार मात्र से सारे सृष्टि का संहार कर सकते हैं। तो एक सेना का विध्वंस करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अब वो भी जब वो कि स्वयं आके अपने अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, आश्चर्यजनक यदि बात है तो केवल इतनी है कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों मनुष्य लीला कर रहे थे। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि ये नवयुवक हैं दोनों, मनुष्य हैं साधारण, इसलिए ये आश्चर्यजनक लग रहा था। अन्यथा श्री कृष्ण के लिए आश्चर्यजनक बात तो कोई है नहीं, ये तो एक छोटा सा लोक है, पृथ्वी लोक। ऐसे कितने सारे लोक हैं इस ब्रह्मांड में, और अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और एक विचार से इन सब का नाश हो जाता है, तो भगवान के लिए एक सेना का नाश करना कोई मुश्किल की बात नहीं थी। परंतु फिर भी भक्त श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, क्योंकि वो मनुष्य लीला कर रहे थे। तो खैर, सारी सेना खत्म हो गई और इन लाखों लाखों सैनिकों में से श्री कृष्ण और बलराम जी के सेना में एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई, और जरासंध की सेना में जितने भी सैनिक थे केवल उनमें से जरासंध बचे और कोई बचा नहीं। फिर बलराम जी ने जरासंध को गिरफ्तार करना चाहा नागपाश से और रस्सियों के साथ भी। उस समय श्री कृष्ण ने उनको रोका, बलराम जी को, और कहा कि इनको जाने दीजिए, और बड़ा अपमान। पहली बात तो जरासंध इतनी बड़ी सेना लेकर आए और छोटे सेना के सामने हार गए, ये तो उनके लिए अपमान की बात थी। दूसरी बात, वो मरे नहीं, उनको गिरफ्तार करते करते भी उन्होंने आसानी से छोड़ दिया, जाओ चलो वापस चले जाओ, और भी अपमानित होने की बात है। तो इतने अपमानित हो गए और इतने दुखी हो गए जरासंध कि उन्होंने सोचा कि मैं मेरे राज्य में वापस नहीं जाऊंगा, मैं क्षत्रिय वृत्ति को त्याग दूंगा, मैं जंगल में जाके तपस्या करूंगा, इस संसार से मैं विरक्त हो जाऊंगा। लेकिन जब वो गए वापस तो उनके असुरी मित्रों ने, जो अन्य राजा थे अलग अलग प्रांतों में, उन्होंने हौसला बढ़ाया जरासंध का और कहा कि देखो हे राजन, तुम्हारी गलती नहीं थी, ये तुमने जिस तरह से लड़ाई की उसमें कोई दोष नहीं था, तुम तो बड़े शूरवीर और शक्तिशाली योद्धा हो, इतने बड़े राजा हो तुम, जो होना था वो दैव से हुआ, प्रारब्ध के अनुसार हुआ, तुम्हारे पूर्व जन्मों के कोई कर्म है जिसके कारण ये तुम्हें हार आज देखनी पड़ी, पर वास्तव में हारना तुम्हारा काम नहीं था, इसलिए सहन करो और आगे बढ़ो और विजय तुम्हारी होगी निश्चित। तो ऐसे हौसला बढ़ाया तो जरासंध ने सोचा कि ठीक है चलो, तो वापस अपने राज्य में चले गए और फिर से एक और विशाल सेना को इकट्ठे करने के पीछे लग गए, और किया भी उन्होंने। और पहली बार आक्रमण जब किया था, जितनी बड़ी सेना थी उससे भी अधिक बड़ी सेना लेकर अब दूसरी बार जरासंध आए मथुरा की ओर, और श्री कृष्ण ने सोचा अच्छा जरासंध फिर से आ गए तो चलो और पृथ्वी का भार थोड़ा कम कर ले। फिर दोबारा श्री कृष्ण ने अकेले और बलराम जी के साथ जरासंध की सारी सेना को खत्म कर दिया, केवल जरासंध बच गए। दोबारा भी जरासंध को वापस भेज दिया, दोबारा जरासंध निराश होकर चले गए। फिर उनके मित्रों ने उनको हौसला बढ़ाया, चलो अगली बार हम होंगे कामयाब, एक दिन हम में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो डरो नहीं आगे बढ़ो। तो जरासंध वापस चले गए, तो दो बार तो हुए, ऐसे कुल मिलाकर 17 बार जरासंध ने विशाल सेना के साथ आक्रमण किया, और 17 बार जरासंध की सेना में जितने भी सैनिक थे, घोड़े थे, हाथी थे, वो सब खत्म हो गए। हर बार केवल जरासंध ही जीवित रहे, और जानबूझकर श्री कृष्ण बलराम ने जरासंध को मारा नहीं, 17वें बार भी छोड़ दिया, क्योंकि श्री कृष्ण के की योजना थी कि आगे चल के भी जरासंध के लिए कोई लीला में स्थान है, आगे चल के भीमसेन को वो श्रेय देना था जरासंध का वध करने के लिए। भगवान का स्वभाव ये भी होता है कि जब कोई अद्भुत कार्य होता है तो वो अपने लिए श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, वो श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते हैं। तो जरासंध के वध का श्रेय वो भीमसेन के लिए उन्होंने आरक्षित रखा था। तो खैर, अब 17 बार तो जरासंध हार गए, परंतु देखिए कितनी दृढ़ता थी कि जरासंध 18वें बार भी आ गए। अब देखिए, असुरों से भी हम कुछ सीख सकते हैं। भक्ति में यदि हमारी दृढ़ता भी ऐसी रही, कभी कभी हम गलती कर बैठते हैं, छोटी मोटी गलती तो हो जाती है, लेकिन हार मानना नहीं चाहिए। अरे चलो, एक बार हमने गलती कर ली भक्ति में, कहीं ऐसे इधर उधर कुछ कर लिया, करना नहीं चाहिए था, तो हम भक्ति छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, चलो हम और आगे बढ़ेंगे, हम होंगे कामयाब। परंतु हम अच्छे चीज़ के लिए कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं, बुरे चीज़ के लिए नहीं। इसलिए भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे अवश्य। तो 18वें बार जब जरासंध निकल पड़े मगध से मथुरा की ओर, तो श्री कृष्ण के कानों तक खबर पहुंची। तो उन्होंने सोचा कि अब इतने दिनों में, क्योंकि चल के आना था, तो चल के आते आते इतने दिन लग जाएंगे, परसों तक यहाँ जरासंध पहुंच जाएगा अपनी सेना के साथ में। लेकिन उस समय हुआ ये कि और एक राजा अपने सेना के साथ आक्रमण करने लगा। वो पहुंच गया तुरंत उस समय, उसका नाम था कालयवन। ये कालयवन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वो एक यवन था। तो हुआ ये कि यदुओं के जो कुल गुरु थे गर्ग मुनि, एक बार यदुवंशियों ने उपहास किया गर्ग मुनि का। तो गर्ग मुनि को बड़ा क्रोध आया कि उन्होंने कहा कि मैं ऐसे एक व्यक्ति को उत्पन्न कराऊंगा जो कि बहुत कष्ट देगा यदुवंशियों को। तो फिर हुआ ये कि एक यवन के रानी के द्वारा उन्होंने एक पुत्र की उत्पत्ति की, जिसका नाम हुआ कालयवन। और ये कालयवन बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि वो ढूंढता रहा हर जगह कि मेरा सामना करने वाला, मेरे इस काबिल कोई व्यक्ति नहीं है सारे पृथ्वी में, कोई प्रतिद्वंद्वी मेरे सामने दिखाई नहीं पड़ता, कोई ऐसे राजा जिसकी इतनी शक्ति हो कि वो मेरा सामना कर सके। उस समय कौन आए वहां? नारद जी आ गए। तो नारद जी ने कहा कि अरे, तुम नहीं जानते, यदुवंशी राजा बहुत शक्तिशाली हैं, वो योग्य प्रतिद्वंद्वी हैं तुम्हारे लिए, तो उनके साथ जाके युद्ध करो। तो कालयवन अपनी सेना को लेकर चले आए। तो जिस दिन वो चले आए, मथुरा के किले के बाहर, मथुरा के प्रांत के बाहर खड़े रहे, तो श्री कृष्ण ने देखा कि अरे, ये क्या हुआ अभी? अब 2 दिन में जरासंध यहाँ पहुंचने वाला है और कालयवन तो आज पहुंच ही गया अपनी सेना लेकर। तो अब यदि हम लोग निकलेंगे और कालयवन के साथ युद्ध करेंगे और 2 दिन में तो वो पहुंच जाएंगे जरासंध दूसरी ओर से, मथुरा में हमारे प्रिय मथुरावासियों की रक्षा करने के लिए कोई रहेगा नहीं, तो हमारे प्रिय भक्तों की हत्या होगी, उनको गिरफ्तार करके ले भी जा सकता है ये जरासंध, क्यों अभी उसके हृदय में द्वेष और बदले की भावना बहुत बढ़ी है, तो अभी क्या करना चाहिए? तो फिर श्री कृष्ण ने सोचा, और श्री कृष्ण अकेले निकल आए मथुरा के किले के अंदर से। इस बार कोई सैनिक नहीं थे, कम से कम जब वो पहली बार जरासंध के साथ युद्ध करने आए थे, छोटी सेना तो थी साथ में कम से कम, इस बार वो अकेले थे। अकेले चलते आए, हाथ में एक भी हथियार नहीं, खाली हाथ बिंदास चले जा रहे बस खाली हाथ चले जा रहे हैं, मानो कि वो टहलने जा रहे हैं। और काल यवन को विश्वास नहीं हुआ कि ये ऐसे चल रहा है आदमी, ऐसे कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, बिना कोई डर के बस यूं ही चलने जा रहा है, हाथ में कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं। और सेना के बीच में से, काल यवन की सेना के बीच में से आराम से चल के गए श्री कृष्ण, और काल यवन देखते जा रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं काल यवन यवन होने के बाद भी उसके इतने उसूल कम से कम थे कि उसने हथियारों का प्रयोग श्री कृष्ण के ऊपर नहीं किया, क्योंकि युद्ध में ऐसे नियम हुआ करता था कि जैसे सामने वाले की दशा है, जो भी हथियार या शस्त्र आदि सामने वाले के पास है, वैसे ही शस्त्र हमारे पास होने चाहिए। वो तीर आदि तो चला रहा है तो हम भी चला सकते हैं, यदि उसके पास कुछ हथियार नहीं है तो खाली हाथ उसके साथ हमें युद्ध करना चाहिए। तो यवन होने के बाद भी देखिए उस समय का प्रभाव कैसे थे, उस समय में कैसे प्रथा थी, कैसे सभ्यता थी, असुर होने के बाद भी उनके अंदर ये उसूल थे। तो काल यवन ने भी अपने अस्त्र छोड़ दिए नीचे और कृष्ण को बोलने लगे, ये कि कहां जा रहे हो कृष्ण? कृष्ण काल यवन की ओर देखा भी नहीं, सीधे काल यवन को पार करके उनकी सेना के बीच में से रास्ता बना के निकल गए। और काल यवन को गुस्सा आ गया कि अरे ये बीच में से जा रहा है, पीछे से बहुत चिल्लाने लगे, अरे कहाँ जा रहे हो भाग के, रहो खड़े रहो यहाँ, तुम तो क्षत्रिय हो, ऐसे कायरता के से कहाँ भागे जा रहे हो। तो कृष्ण ने सुना ही नहीं, आराम से चलते गए चलते गए। तो काल यवन को बहुत गुस्सा आया और दौड़ने लगे श्री कृष्ण के पीछे, अपने हथियार तो पीछे छोड़ दिए कि चलो हाथों से युद्ध करेंगे। अब श्री कृष्ण को भला कौन पकड़ सकता है, मन के गति से भी तेज वो उनकी चाल है। तो जो योगी जन जिनके जो मन की गति से भी तेज वो आगे चलते हैं, फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण के नखमंडल, चरण कमलों के नखमंडल तक भी नहीं पहुंच सकते। तो भगवान विरोधाभासों के भंडार हैं, परंतु क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं, तो इन समस्त प्रकार के विरोधाभासों का समन्वय श्री कृष्ण में होता है। भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे भी हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे कठोर हैं, सबसे कोमल भी हैं। श्री कृष्ण सबके बाहर हैं, सबके अंदर भी हैं। उसी तरह से श्री कृष्ण एक जगह हैं और सब जगह हैं। श्री कृष्ण धीरे से चलते हैं तो कभी मन की गति से भी तेज चलते हैं एक ही साथ। तो ये भागे जा रहे थे काल यवन श्री कृष्ण के पीछे, और ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण भी भाग रहे थे, श्री कृष्ण बड़े आराम से चल रहे थे और काल यवन भाग भाग के थके जा रहे थे, लेकिन देख रहे थे कि जितना भी वो पास में पहुंचे श्री कृष्ण तक पहुंच नहीं पा रहे। हालांकि श्री कृष्ण भाग नहीं रहे हैं, ये बड़ा रहस्य था काल यवन के लिए, और इसलिए काल यवन का गुस्सा तो और भी बढ़ता गया कि मैं इतनी तेजी से भाग रहा हूं और ये श्री कृष्ण केवल आराम से चल रहा है, फिर भी मैं श्री कृष्ण तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूं। तो भागते भागते वो पीछा कर रहा था, तो श्री कृष्ण बड़े आराम से चलते गए, पहाड़ में चढ़े, वहां एक गुफा था, तो गुफे के अंदर श्री कृष्ण चले गए। तो पीछा करते करते भागते भागते काल यवन वहां पर आ गया, और काल यवन ने देखा अंधेरे में क्या है यहाँ पर, क्या है, देखा कि एक आदमी सो रहा है नीचे लेटा हुआ है। तो काल यवन ने सोचा कि ये श्री कृष्ण है, थक गया होगा या डर के मारे आके गुफे में सो गया है। तो बड़ा गुस्सा आया और जोर से काल यवन ने उस सोए हुए इस लेटे हुए आदमी को लात मारा, और जब लात मारा तो वो व्यक्ति जग गया और इधर उधर देखने लगा कि किसने मुझे ऐसे जगाया। और उस व्यक्ति की आंखें या उसकी दृष्टि काल यवन पर पड़ी, और जैसे ही वो हुआ तो काल यवन का शरीर भस्म हो गया, काल यवन की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण थे नहीं, वो श्री कृष्ण अंदर थे। फिर श्री कृष्ण यहां आए और वो व्यक्ति जो लेटे हुए थे वो राजा मुचुकुंद थे, मुकुंद नहीं मुचुकुंद। तो मुकुंद और मुचुकुंद दोनों अब आमने सामने खड़े थे। तो मुचुकुंद ने देखा कि यहाँ पर ये कौन व्यक्ति खड़े हैं, ये व्यक्ति कौन है जिसने मुझे जगाया, और ये कौन है जो मेरे सामने खड़े हैं। तो जब मुचुकुंद राजा ने श्री कृष्ण का दर्शन किया, शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं श्री कृष्ण के सुंदर रूप का, उनके वस्त्रों का आदि, जो कि राजा मुचुकुंद ने देखा, आश्चर्यचकित रह गए राजा मुचुकुंद कि इतने सुंदर व्यक्ति ये कौन है, ये तो भगवान ही होंगे, इनके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे कि मुझे नहीं लगता कि आप कोई देवता हो सकते हैं, आपको तो परम सत्य भगवान ही आप होंगे निश्चित ही। परंतु एक मर्यादा है कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ में रहते हैं, विशेष रूप से कोई यदि सम्माननीय व्यक्ति हो, तो उनका परिचय पहले पूछने के पहले हमें अपना परिचय देना चाहिए। तो राजा मुचुकुंद ने कहा कि मैं मेरा परिचय पहले देता हूं, मैं राजा मांधाता का पुत्र हूं, इक्ष्वाकु राजा के वंश में मैं आता हूं, सूर्यवंशी राजा हूं मैं, मेरे वंश में ही श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था, और खैर। तो राजा मुचुकुंद ने कहा कि कई वर्ष पहले, ये किसी पिछले युग की बात थी, द्वापर युग की बात नहीं थी, जब ये घटना हुई तो ये द्वापर युग का अंत था, मुचुकुंद राजा और श्री कृष्ण के बीच में संवाद। तो राजा मुचुकुंद किसी पूर्व युग में रहा करते थे, तब से द्वापर के अंत तक केवल सोए हुए थे, तो इसके पीछे क्या रहस्य था। तो राजा मुचुकुंद बताते हैं कि कार्तिकेय जो कि देवताओं के सेना के सेनापति हैं, उन्होंने राजा मुचुकुंद से निवेदन किया था कि असुर लोग जो हैं बहुत हमला कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो हमारे पक्ष में आके हमारी रक्षा करने के लिए मदद करना, हमारी ओर से युद्ध करना। तो राजा मुचुकुंद ने निस्वार्थ भावना से देवताओं के पक्ष में आके असुरों के विरुद्ध युद्ध किया। ऐसे देवताओं के अनेक साल बीत गए। आप तो जानते हैं कि देवताओं का एक दिन यहां पृथ्वी लोक का एक साल है, और ऐसे अनेक साल देवलोक में बीत गए। तो यहां इस दरमियान हुआ ये कि लाखों लाखों साल बीत गए। राजा मुचुकुंद ने अपने राज्य का, अपने परिवार का, अपने धन का, अपने प्राण का भी इसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने सोचा कि मुझे देवताओं की सेवा करनी है, उनकी मदद करनी है। तो ऐसे जब बहुत साल बीत गए और देवतागण विजयी हो गए, तो कार्तिकेय ने राजा मुचुकुंद से पूछा कि हम लोग आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, तो आपको क्या चाहिए आप बताइए। तो राजा मुचुकुंद के मन में एक ही विचार था कि मैं इतना थक गया हूं, इतने साल युद्ध कर करके मैं केवल सोना चाहता हूं, नींद आनी मुझे बस, और मैं वरदान आपसे यही चाहता हूं कि कोई मुझे नींद से जगाए नहीं, कोई जो भी मुझे नींद से जगाए, मेरी आंख खुले, मेरी नजर उस पर पड़े तो उसका शरीर भस्म हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसे वरदान मांगा राजा मुचुकुंद ने। ऐसे होता है। एक भक्त बता रहे थे मजाक में कि एक बार मैं इतना भूखा था, कहीं एक जगह गया और एक व्यक्ति ने पूछा, ये भी चलेगा क्या आपको? चलेगा, जो है वो तो कुछ भी खाने के लिए मैं तैयार हूँ, अब इतनी भूख लगी है कि जो भी लाओ खा लूंगा। हाँ, वो नियमों का भंग तो नहीं करते, लेकिन कहने की बात वो कह रहे थे कि जब आदमी को भूख लगती है तो भोजन के अलावा और कुछ सूझता नहीं है उसे, जब नींद आती है तो केवल नींद के अलावा और कुछ बात मन में नहीं आती। तो इतने थके हुए थे राजा मुचुकुंद कि उन्होंने ऐसे वरदान मांग दिया। तो कार्तिकेय ने कहा तथास्तु। तो फिर वो राजा इस गुफे में आके सो गए। पृथ्वी के लाखों साल बीत गए और अभी तक वो सो रहे थे। ये भी भगवान श्री कृष्ण की योजना थी। तो भगवान चाहते थे कि गर्ग मुनि की बातों को अनादर न किया जाए, क्योंकि यदुवंशी नहीं कोई और ऐसे होना चाहिए जिससे के द्वारा काल यवन की हत्या होनी है। तो काल यवन के राजा मुचुकुंद के द्वारा, क्षमा कीजिए, राजा मुचुकुंद के द्वारा फिर भगवान ने यह कार्य संपन्न कराया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया, कहा कि मेरा नाम वासुदेव है, मैं देवकी और वसुदेव का पुत्र हूं। और राजा मुचुकुंद ने भूरी भूरी प्रशंसा की भगवान की, बहुत सुंदर स्तुति की। सुखदेव गोस्वामी विस्तार में वर्णन करते हैं। अंततः अब वो बाहर निकले गुफे के और उनको समझ आया कि अब कलयुग आने वाला है, क्योंकि उनका शरीर तो बहुत विशाल था, क्योंकि पूर्व युग का शरीर था ना, बहुत विशाल था। और उन्होंने देखा कि यहाँ इस युग के लोग बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं। द्वापर युग के अंत में लोगों का शरीर आजकल के हिसाब से बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, हुआ करता था उनका शरीर, साधारण आदमी का शरीर भी बहुत बड़ा था। राणा प्रताप, उनका जो उनकी जो कवच है, जो तलवार है, वो रखा है कहीं राजस्थान में। तो एक भक्त बता रहे तो उसको उठा नहीं सकते, इतना भारी है उस शरीर पे, कैसे पहना होगा उन्होंने, और वो तोला उठाया भी कैसे उन्होंने, उठा के वो युद्ध करना है उसके साथ। तो ये केवल 500 साल पहले की बात है। ये 500 सालों में मनुष्य के शरीर, बुद्धि, बल आदि में इतना घटन हुआ है। भागवत में तो कहा गया है कि कलयुग में इन चीजों का घटन होता रहेगा। और राजा मुचुकुंद तो और भी पूर्व युग के थे, उनका शरीर तो बहुत बड़ा था। द्वापर के अंत के लोगों को वो सोच रहे बहुत छोटे छोटे हैं ये, अब कलयुग आने वाला है तो फिर यहाँ रह के कोई लाभ नहीं है। तो वो निकल पड़े हिमालय की ओर, गंधमादन पर्वत में पहुंचे, बद्री काश्रम में जाके तपस्या करने लगे, भगवान के का आशीर्वाद लेकर वहां पे चले गए। उधर श्री कृष्ण वापस आए, काल यवन के जो सैनिक थे वहां पर उनकी हत्या सबकी कर दी, और दो दिन बाद जरासंध आए। अब इस बार श्री कृष्ण ने सोच विचार किया था कि अब और युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे मेरी द्वारका लीला प्रारंभ करनी है, मथुरा से मुझे अब द्वारका जाना है, मेरे सैनिकों को और खतरा नहीं चाहिए, मेरे ब्रजवासियों को मैं एक शांत जीवन बिताना चाहता हूँ। तो द्वारका में समुद्र में विश्वकर्म के द्वारा उन्होंने एक बहुत सुंदर राज्य बनाया, एक किला बनाया, जिसमें कोई भी दो पैरों वाला पशु प्राणी कोई अंदर नहीं जा सकता। और सुखदेव गोस्वामी द्वारका शहर का वर्णन करते हैं कि कैसे बना, अद्भुत एक शहर था। हर प्रकार के ऐश्वर्य उस शहर में थे, जिसका वर्णन सुनने पर हम शायद विश्वास भी नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि द्वारका के किले के जो थे छोड़े बहुत अभी लक्षण आज भी दिखाई पड़ते हैं समुद्र के अंदर। जब हम बेट द्वारका जाएंगे तो हम इन चीजों को देखेंगे। तो हुआ यह कि भगवान ने सोचा कि अब मथुरावासियों को मैं कष्ट नहीं देना चाहता। तो जब वो रात को सो रहे थे और उधर द्वारका शहर तैयार हो चुका था, तो जब ये सोए हुए मथुरावासियों को उन्होंने स्थानांतरित कर दिया अपनी योग शक्ति के द्वारा, और जब मथुरावासी सुबह को उठे तो देखा कि वो द्वारका में है। रात को सोए थे मथुरा में और उठे द्वारका में, तो अब मथुरा शहर खाली पड़ गया था और श्री कृष्ण अकेले थे बलराम जी के साथ। अब वो निकल पड़े। जब बाहर आए तो जरासंध आ पहुंचे थे अपनी सेना को लेकर, चारों दिशाओं से घेर लिया था। और पहले 17 बार जितनी बड़ी सेना लेकर आए थे, उतनी ही बड़ी सेना लेकर अब 18 बार भी आए। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। श्री कृष्ण जरासंध के सामने से निकल गए, उनकी आंखों के सामने से निकल गए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री कृष्ण को कोई डर नहीं था। डर किस बात का, वो तो परम सत्य हैं। 17 बार तो अकेले हरा चुके हैं जरासंध की सारी सेना को, तो डरने की क्या बात थी वैसे भी। परंतु श्री कृष्ण की द्वारका लीला प्रारंभ करने का समय हो गया था। और एक बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि रुक्मिणी देवी एक पत्र लिखना चाहती थी श्री कृष्ण को, और रुक्मिणी देवी के पत्र को स्वीकार आदि करने के लिए उनको द्वारका रहना था। तो ये लीला होनी थी, इसलिए श्री कृष्ण ने सोचा अब मथुरा से द्वारका जाना मेरे लिए जरूरी है। और ऐश्वर्य वैराग्य के ऐश्वर्य का भी प्रदर्शन मैं करूंगा साथ साथ। तो वो निकल आए और जरासंध के आंखों के सामने जैसे काल यवन के साथ किया, वैसे जरासंध के साथ किया। जरासंध को बहुत गुस्सा आया कि अरे युद्ध किए बिना ये दोनों कृष्ण और बलराम चले जा रहे हैं। तो ललकारा बहुत, लेकिन कृष्ण बलराम ने दोनों ने सुनी नहीं एक भी बात। आराम से चलते गए, अपनी सेना को साथ लेकर पीछा करने लगे जरासंध। श्री कृष्ण और बलराम एक प्रवर्षण नाम के पर्वत के ऊपर चढ़े और जरासंध ने पर्वत को घेर लिया और आग लगाई पर्वत को। बहुत सारी लकड़ी आदि थी, पेड़ तो थे ही, आग लगाई चारों ओर से। आग ऊपर की ओर चलती गई, पहाड़ में ऊपर जितना भी कुछ था वो जल गया। परंतु श्री कृष्ण बलराम ने उस पहाड़ के ऊपर से छलांग मारी, नीचे आए जमीन पर और आसानी से चल के वो निकल गए द्वारका की ओर और पहुंचे द्वारका। और जरासंध को पता नहीं चला कि श्री कृष्ण बलराम इस तरह से चले गए हैं। उन्होंने सोचा श्री कृष्ण बलराम की हत्या हो गई, तो जरासंध बड़े संतुष्ट हो गए कि चलो 18वीं बार तो हम सफल हो गए, हम कामयाब हुए। तो जरासंध वापस चला गया मगध देश में और श्री कृष्ण बलराम अपनी द्वारका लीला शुरू करने के लिए तैयार हो गए। तो इस लीला में विशेष रूप से, जबकि वो जरासंध के साथ युद्ध नहीं करते हैं और युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाते हैं, इस लीला में भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ कहा गया है। और फिर क्योंकि वो द्वारका आए, ऋण भूमि को छोड़कर द्वारका आए, इसलिए द्वारकाधीश भगवान है वहां पर। और वही मूर्ति जब यहाँ आई तो वो रणछोड़ राय कहलाते हैं। राय मतलब राजा, यहाँ के राजा हैं, द्वारका के राजा हैं, समस्त सृष्टि के राजा हैं। अब वो समस्त सृष्टि के राजा आज यहाँ डाकोर में पधारे हैं। तो मंदिर में कौन छे? રાજા રણછોડ છે, મંદિરમાં કોણ છે? રણછોડ છે. તો યહાં રાજા રણછોડ જી, રણછોડ રાય વિરાજમાન હૈ, સબકે ઉપર કૃપા બરસાને કે લિયે બેઠે હૈ. તો યે હૈ રણછોડ નામ કા તાત્પર્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કા. તો આગે ચલ કે કલ હમ ઓર નાથ દ્વારા કી ઓર જાયેંગે, તો વહાં ઓર એક સુંદર સ્થાન હૈ, તીર્થ સ્થાન હૈ ભગવાન કા. ગોપાલ જી વહાં વિરાજમાન હૈ, ઉનકી ભી બહોત સારી લીલાએ હૈ, તો વહાં દર્શન કરેંગે, કથા ઓર કીર્તન નાથ દ્વારા મેં કરેંગે. લેકિન યાત્રા કાફી કરની હોગી, યહાં સે અમદાવાદ ઓર અમદાવાદ સે ફિર આગે નાથ દ્વારા, તો શાયદ એક દિન તો હમેં કેવલ પહોંચને મેં લગ જાયેગા ના. 4:30 બજે શામ કો પહોંચ જાયેંગે, કલ સુબહ સે 4.5 ઘંટે મેં પહોંચ જાયેંગે. અચ્છી બાત, ઠીક હૈ. તો બહોત બહોત ધન્યવાદ. કે આપકો કોઈ પ્રશ્ન હૈ? હા જી. આજ વલ્લભ વિદ્યાનગર સે ભી ભક્ત આયે હૈ કઈ? કોણ કોણ આયે હૈ વલ્લભ વિદ્યાનગર સે? હાથ ઉપર કીજીએ. અરે ઇતની બડી સંખ્યા મેં આયે હૈ. આપ તો જાનતે હૈ કે વલ્લભ વિદ્યાનગર યહાં પાસ મેં શહેર હૈ, હમારી સંસ્થા કા બહોત સુંદર મંદિર વહાં પર હૈ, બહોત અચ્છે અચ્છે ભક્ત ભી હૈ, તો વો સબ ભી યહાં પર આજ આયે હૈ. ધન્યવાદ, આપ સબ યહાં પર આયે. हाँ, प्रश्न है किसी का? हाँ,
हरे कृष्ण महाराज जी.
हरे कृष्ण.
मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि जरासंध को कृष्ण चाहते तो मार सकते थे, लेकिन क्योंकि आज ये लीला थी जो भीमसेन के द्वारा होना था उनकी हत्या, तो इसी तरह से कालियवन जो था, कालियवन को भी भगवान ने मारा नहीं, इस कालियवन को भी भगवान ने मारा नहीं था, तो केवल इसलिए कि उसकी भी लीला थी राजा मुचकुंद के द्वारा, इसलिए?
ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, एको आ रहा है. क्या था प्रश्न बिना?
मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, आप ठीक है आवाज?
हाँ, शायद वो स्पीकर उस तरफ है ना, तो मुझे स्पीक से नहीं सुनाई दे रहा है.
हाँ हाँ, बिना माइक के पूछिए.
હા, મુચકુંદ કો જગાને કા સમય હુઆ થા, રાજા મુચકુંદ કા ઉદ્ધાર કા સમય હુઆ થા, ભગવાન રાજા મુચકુંદ કે ઉપર કૃપા બરસાના ચાહતે થે, ઓર વો ખુદ જગાતે વો ઠીક નહી હોતા, ક્યુંકિ વરદાન એસે થા કે જિનકો દેખેંગે ઉનકા શરીર નષ્ટ હો જાયેગા. તો ભગવાન જબ ભી કોઈ કાર્ય કરતે હૈં, અનેક ઉદ્દેશ્યો કી પૂર્તિ એક કાર્ય સે કર દેતે હૈં ભગવાન. તો ચલો રાજા મુચકુંદ કો જગાયા જાય, રાજા મુચકુંદ કા ઉદ્ધાર ભી કિયા જાય, રાજા મુચકુંદ કે દ્વારા કાલયવન કી હત્યા ભી હો જાય, ઓર ગર્ગ મુનિ કા અનાદર ન કિયા જાય, ઓર જો દેવ લોકો દેવતાઓ ને જો વરદાન દિયા રાજા મુચકુંદ કા, વો ભી ઠીક ઠાક રહે, તો ઇન સમસ્ત ઉદ્દેશ્યો કી પૂર્તિ ઇસ એક કાર્ય સે ભગવાન ને કર લિયા. ઠીક હૈ, ઓર કોઈ પ્રશ્ન હૈ? હા, માઇક. હા,
માઇક.
ये सबसे छोटा ब्रह्मांड ऐसा नहीं है, ये मध्यम वर्ग का एक ब्रह्मांड है, परंतु
प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, ये 14 भुवन है, तो हर एक ब्रह्मांड के भीतर एक ही पृथ्वी लोक है, अनेक पृथ्वी नहीं है। हर एक ब्रह्मांड पृथ्वी लोक है अनेक, परंतु अलग अलग ब्रह्मांडों में। और कोई प्रश्न है, एक या दो? हाँ ये 18 बार क्यों? कलयुग का 18 कैसे? इसके पीछे कोई खास ऐसे कारण नहीं है। भगवान ने सोचा कि चलो अब उनके लीला का समय हो चुका है, द्वारका लीला शुरू करने का समय हो चुका, अब पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी का बोझ हल्का कर दिया जरासंध की ओर से, बस आगे और भी लीलाएं हमें करनी है, इसलिए बात आगे बढ़ी, ऐसे कोई खास वजह नहीं है। हाँ यह माइक दीजिए। हरे कृष्ण। अभी नरसिंह मेहता के बारे में ऐसे कहते हैं, लेकिन शास्त्र प्रमाण इसलिए नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे हो सकता है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। शास्त्रों में ऐसे कोई प्रमाण हमने देखा नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अभी यह महेंद्र भाई पटेल हैं क्या यहाँ पे?
महेंद्र भाई पटेल हैं।